हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 10। वीतरागा भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से इन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, उनसे किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया और वो डॉक्टर थे। कह रहे थे कि कोई डॉक्टर अगर हजारों हजारों में से किसी एक व्यक्ति को ठीक करता है तो ऐसा डॉक्टर किस लाभ किसका फायदे क्या फायदा होगा। तो भगवान सातवें अध्याय में बोलेंगे आगे कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यते सिद्धये यततां अपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेति तत्पतः। हजारों हजारों में से कोई एक व्यक्ति भगवान के बारे में जानने का प्रयास करता है और उन हजारों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है। तो इस श्लोक को देख के लगता है कि व्यक्ति भगवान को समझना बहुत कठिन है, जो कि सही बात है, लेकिन कठिन इसलिए है क्योंकि व्यक्ति सही से सही साधन का उपयोग नहीं करते। यहां भगवान बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने भगवान के में तन्मय हुआ है, भगवान की भक्ति की है, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझा है प्रमाणिक स्रोतों से परंपरा से, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो भूतकाल में भगवान के चरणों की प्राप्ति किए हैं और इस जन्म में भी। और आप हम लोग अगर अपना अभ्यास करें इस प्रकार से भगवान के बारे में जानने का तो हमको भी प्राप्ति हो सकती है। तो ये जो भगवान को ना जान पाने की दुर्गमता है, तो मुश्किल है, वो कारण ये है कि व्यक्ति परंपरा में ज्ञान को स्वीकार नहीं करता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति पहले सिद्धांत समझना चाहे, सिद्धांत ये है कि कोई भी जो साध्य है वो साधित हो जाता है अगर व्यक्ति सही साधन का उपयोग करे। जैसे अगर किसी को खेत में कुछ उगाना है, क्षमा कीजिएगा, कुछ अगर अनाज उगाना है तो अगर वो रोड के ऊपर बीज डाले तो बहुत मुश्किल है कि कुछ उगा पाएगा, असंभव है प्रायः। या फिर कोई साइंटिस्ट केमिकल लेबोरेटरी में कुछ अनाज उगाने का प्रयास करे तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक किसान जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है वो भी टनों टन अनाज उगा पाता है अगर सही साधन का उपयोग करता है, बीजों का उपयोग करके एक उपजाऊ जमीन में डालता है और उसके द्वारा वो उगा सकता है बहुत सारा सारा अनाज। लेकिन वही चीज एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार से अगर व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म के दिव्यता को समझता है, शास्त्रों से, गुरु साधु और शास्त्र से सुन लेता है, समझ लेता है श्रद्धा से, तो उसकी मुक्ति बड़ी आसान है। वही मुक्ति जिसको प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को बहुत बहुत जन्मों तक मेहनत करनी पड़ती है। तो तात्पर्य को देखेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रायः लोग अपने मनोधर्म के द्वारा ये सोचते हैं कि परमात्मा अगर हर जगह व्याप्त है तो वो निराकार होगा, वह शक्ति मात्र होगा। लेकिन शास्त्र से हम सुनते हैं और जब समझते हैं शास्त्र से तो हम समझते हैं कि परमात्मा एक व्यक्ति है जो कि नियंता है और पूरे जगत को नियंत्रित कर रहे हैं। और ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि व्यक्ति शरीर शारीरिक बुद्धि की चेतना में रहता है कि मैं ये शरीर हूं, और जब भौतिक चेतना से ग्रस्त होते हैं तो आध्यात्मिक वस्तुओं के स्वरूप के बारे में समझना अपने आप से बहुत मुश्किल होता है। जैसे इस जगत में किसी वस्तु को काटिए और वो हर जगह उसको मतलब छोटा छोटा करते चले जाइए तो उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान का स्वरूप इस प्रकार से नहीं है, भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और पूरे जगत में व्याप्त होते हुए भी उनका स्वरूप बना रहता है। तो ये भगवान के स्वरूप क्योंकि स्पिरिचुअल है इसलिए भगवान के स्वरूप के ऊपर भौतिक नियमों का एप्लीकेशन नहीं हो सकता, भौतिक नियम उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लागू नहीं कर सकते हैं। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। यानी कुछ लोग कहते हैं अगर भगवान आदि पुरुष हैं तो निश्चित रूप से अब तक तो मर गए होंगे, लेकिन शास्त्र क्या बोलते हैं, आदि परंतु नवयौवनम च, वो आदि हैं लेकिन साथ ही साथ वो नवयौवनम भी हैं, यानी कि नए नवयुवक के समान, नव तरुण के समान उनका सुंदर स्वरूप है शाश्वत रूप से। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत होते हैं, फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। थोड़ा ही समझने का बात है, इस जगत में हमारे शरीर हमें कष्ट देते हैं, हमारे शरीर नाशवान हैं और अज्ञानमय हैं। तो जब मुक्ति की बात इस प्रकार से समझाई जाती है, जो वैष्णव मुक्ति है, कि इसमें जीवात्मा सदा सदा के लिए भगवान की सेवा में संलग्न रहेगा आध्यात्मिक जगत में, तो ऐसे लोग भयभीत हो जाते हैं। अब भयभीत होने का कारण क्या है? आप लोगों ने प्रसिद्ध एक कहावत सुनी होगी, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के भी पीता है, छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो हम देख रहे हैं कि इस जगत में हमारा शरीर बहुत कष्ट दिया है हमको, शरीर से संबंधित लोग हैं उन्होंने बहुत कष्ट दिया है, और हम किसी की सेवा करते हैं, स्वामी की तो हमसे प्रेम नहीं करता अपितु हमको हमारा उत्पीड़न करता है या हमको शोषण, हमारा शोषण करता है। तो इस प्रकार से हमारे मन में ये जो भावना आती है कि अरे, हम सुनते हैं कि अरे भगवान के धाम में मुझे शाश्वत रूप से भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, एकदम निस्वार्थ सेवा, तो व्यक्ति के कुछ लोगों के जो भक्त नहीं है, या प्राय सभी लोगों के जो भक्त नहीं है, उनके मन में ये एक डर आ जाता है कि अरे मैं भगवान की सेवा क्यों करूं। लेकिन ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि आध्यात्मिक स्तर पे भगवान यानी कि स्वामी और भक्त यानी कि सेवक में अंतर नहीं रह जाता। इन द सेंस आप देख सकते हैं भगवद गीता के पृष्ठ कवर पे, पृष्ठ के ऊपर, मुख्य पृष्ठ के ऊपर, कि भगवान स्वयं ही अर्जुन का रथ हांक रहे हैं, जो कि द्वारकाधीश हैं, पूरे जगत के स्वामी हैं, लेकिन प्रेमवश अपने ही भक्त का तांगा चला रहे हैं, या कह सकते हैं उनका रथ चला रहे हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत में प्रेम के व्यापार में भक्त और भगवान एक ही प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। भले ही भक्त सेवक रहता है लेकिन उस सेवा के द्वारा अनंत सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा बात एक और जो महत्वपूर्ण है समझने के लिए, कि ब्रह्मानंद यानी आत्मा का आनंद लिमिटेड है, यानी कि सीमित है, क्योंकि आत्मा सीमित है, अणु है, लेकिन भगवान क्योंकि असीमित है, इसलिए भगवान की को जानने में या भगवान की सेवा के द्वारा आत्मा को असीमित सुख प्राप्त होता है। इसीलिए ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, पूरी तरह से अपने चित्त को शुद्ध कर लेता है, वो भी भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करता है, लभते इच्छा करता है। इसी चीज को श्रीमद् भागवत में बताया गया है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथे अपि रुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, आत्मसंतुष्ट व्यक्ति हैं, वो भी भगवान हरि के भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, निस्वार्थ भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि के ऐसे गुण हैं, एक आध्यात्मिक गुण हैं जो उनको आकर्षित करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यानी कि यहाँ श्रील प्रभुपाद जी सायुज मुक्ति के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आत्मा भगवान के शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज, जिसे ब्रह्म ज्योति कहती है, उसमें जाके लीन हो जाती है। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि आत्मा कभी भी अपने व्यक्तित्व को नष्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में बताया है, अविनाशी तु तद विद्धि सर्वम इदम ततम। जो आत्मा है वो कभी भी उसका नाश नहीं होता, लेकिन वो ज्योति के रूप में उस ब्रह्म ज्योति में कुछ समय के लिए जाकर रह सकती है, और कुछ समय का अर्थ हो सकता है कई कई सृष्टियों का समय। लेकिन उसके बाद क्योंकि भगवान की सेवा का सुख नहीं मिलता है, इस कारण से वो आत्मा वापस इस जगत में आती है। इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत में होती है, आरुज कृच्छे न परम पदम ततः पदंति नादृत युष्मात् पदांग्रयः। उस परम पद को प्राप्त करके भी व्यक्ति वापस इस जगत में आ जाता है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भयावह अवस्था क्यों है? जैसे आप देखिए, कुछ समय के लिए हम अपने रूम में बैठे रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी इस बात उदाहरण को दिया करते थे, लेकिन कितनी देर तक हम अकेले रहना चाहेंगे? क्या हम शाश्वत रूप से अकेले रहना चाहेंगे? आत्मा को सुख मिलता ही है संबंधों के द्वारा, सेवा के द्वारा, इसलिए ये स्थिति आत्मा की बड़ी कह सकते हैं बहुत ही अनस्टेबल है। यानी कि जब हिंदी शब्द नहीं आता रहा मेरे को, अनस्टेबल का मतलब हो गया है कि कभी भी वो स्थिति अच्छी नहीं है। ब्रह्म ज्योति में जाके टंगे रहना और भगवान से कोई संबंध ना होना, कोई सेवा का सुख ना मिलना, ये बहुत बड़ा दुख है एक्चुअली आत्मा के लिए। इसी कारण से यह भयावह स्थिति है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं, और ये आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। क्यों? क्योंकि ये जीवात्मा भगवान से अपने संबंध को नहीं समझ पाया है कि वो भगवान का अंश है और उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, भगवान के चरणों की प्राप्ति करना, भगवान के भक्त बनना, भगवान के धाम में जाना। इसके अतिरिक्त एक मिनट और आप देखिए कि प्रायः मुक्ति का अर्थ लोग इसी प्रकार से लेते हैं कि भगवान में जाके मिल जाना या ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाना। इसलिए आवश्यक है कि हम भगवद गीता से सुन करके सही सही ज्ञान प्राप्त करें और फिर सही साधन का अवलंबन करें, सहारा लें, जिसके द्वारा भगवान के चरणों की प्राप्ति हो। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते, अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्तावश वे निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततो गत्वा शून्य है। इससे पहले कि हम इसकी चर्चा करें, मैं आपका ध्यान तात्पर्य के शुरुआती भाग में लेके जाना चाहता हूं, जहां पे प्रभुपाद जी वीत राग की बात कर रहे हैं। राग मतलब होता है आसक्ति। व्यक्ति की शरीर में बहुत आसक्ति होती है, जैसा कि प्रभुपाद जी ने बताया था भौतिकतावादी व्यक्तियों की, इसी कारण से वो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का धारणा को ग्रहण नहीं करते हैं। और जो निर्विशेषवादी हैं, वो भले ही शरीर में आसक्त ना हो, लेकिन उनको भगवान के शाश्वत दासत्व से भय होता है। और यहाँ पे तो वो लोग छट गए इस बात से, और क्रोध वाली बात यहाँ बता रहे हैं कि बहुत सारे तत्वों को, वादों को सुन करके व्यक्ति परेशान हो जाता है और फिर वो क्रोध में सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंततो गत्वा शून्य है। तो इस तीनों प्रकार की धारणाओं से भक्त जो है वो मुक्त होते हैं, और इन तीन कारणों की वजह से ही हम भगवान के धाम जाने के लिए अयोग्य होते हैं। तो हमें भौतिक आसक्ति से बचना है, भगवान की सेवा के भय से बचना है, और इस क्रोध से बचना है कि कुछ भी अल्टीमेटली सत्य नहीं है, सब कुछ शून्य है। इस प्रकार से ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। जैसे बहुत बार कुछ लोग देखते हैं समाज में, हम कलयुग में पर्टिकुलरली देखते हैं कि जो गुरु लोग हैं, सो कॉल्ड गुरु हैं, वो धोखा देते हैं अपने शिष्यों को। तो कुछ लोग जब इस प्रकार से धोखा खा लेते हैं तो सोचते हैं कि वो हर जो गुरु है वो धोखा ही देता है। लेकिन इसमें हम ये नहीं समझते कि जब हमने गुरु स्वीकार किया था तो क्या हमने पूर्ण ज्ञान के द्वारा उसको गुरु स्वीकार किया था या केवल अपने अंधश्रद्धा के आधार पर स्वीकार कर लिया था। तो अगर आप भगवद गीता और शास्त्रों को पढ़ें और उसके आधार पर गुरु को स्वीकार करेंगे तो इस प्रकार की संभावना हो ही नहीं सकती है। निराशा की, अविश्वास की कोई मतलब नहीं है। जब हम देखते हैं कि हमारे गुरु वही बोल रहे हैं जो भगवद गीता में लिखा गया है तो नेचुरली हम उनके पर विश्वास करेंगे। लेकिन अगर मनगढ़ंत तरीके से कोई गुरुजी बोल रहे हैं तो हम बिल्कुल बाध्य नहीं है उसको स्वीकार करने के लिए। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे अमेरिका के जो हिप्पी समाज था उनके बारे में बता रहे हैं, जो लोग ड्रग्स लेते थे और मानसिक जो कुछ उनको कल्पना होती थी उसी को वो लोग सोचते थे कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति है। या भारत में भी लोग कुछ चिलम चरस वगैरह पी लेते हैं और सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रहे हैं, लेकिन ये सब तमगुण है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीन अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये बहुत यही इस बात का प्रपास बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, यानी कि भौतिक जीवन की आसक्ति के कारण आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि न रखना। आध्यात्मिक साकार रूप का भय, यानी कि अपने शाश्वत दासत्व के प्रति भय रखना भगवान के प्रति। और जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना, यानी कि सब कुछ बकवास है, सब कुछ झूठ है, सब कुछ मिथ है, यानी कि कपोल कल्पना है, इस प्रकार की भावना से बचना। इसके द्वारा हम अगर इनसे बच जाते हैं तो भगवान की भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं। जीवन की इन तीन अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ठीक ठीक प्रकार ज्ञान प्राप्त होता है अपनी स्थिति के बारे में, भगवान कौन है, हम कौन है और भगवान से हमारा क्या संबंध है। जब इस संबंध को हम ठीक से समझेंगे तब हम अविधेय यानी भक्ति को ठीक प्रकार से कर पाएंगे। और विधि विधानों का पालन करने से, भक्ति के विधि विधानों का पालन करने से हमारे हृदय में जो भौतिक आसक्तियां हैं वो उनका नाश होता है और फिर भगवान में श्रद्धा बढ़ती है, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संघोत भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदिंचति साधकानाम अयम प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ये भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ जो है श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने लिखा है और ये बहुत सुंदर तरीके से बताता है किस प्रकार से हमारी भक्ति में प्रगति होती है। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की समान इच्छा होनी चाहिए, इसे कहते हैं श्रद्धा। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं, इसे कहेंगे साधु संघ। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग का प्रारंभ करता है, इसे कहते हैं भजन क्रिया। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, जिसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है, निष्ठा, और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है, इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है जो भाव में अथवा भगवत प्रेम में प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। एक इंपॉर्टेंट बात आप देखेंगे, एक चीज तो ये कि व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि मुझे श्रद्धा आई क्यों या अन्य लोगों को श्रद्धा क्यों नहीं आती है। तो श्रद्धा का कारण है अनेक अनेक जन्मों में अज्ञान से या ज्ञान से इकट्ठी की गई सुकृति। अच्छे कार्य जो अज्ञान से हम भक्ति कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भक्त हरे कृष्ण कीर्तन जोर जोर से गा रहे हैं तो कुछ व्यक्ति आकर के उसमें नाचते हैं, उनको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, या भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो सुकृतिवान लोग होते हैं उनको हृदय में भगवान इस प्रकार की श्रद्धा देते हैं कि देखो कुछ आपको, आप जीवन से संतुष्ट नहीं है, आपको कुछ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी चाहिए। और फिर जब वो प्रामाणिक साधुओं को सुनते हैं तो सब अपने आप ही हृदय से भगवान प्रेरणा देते हैं कि नहीं, ये लोग सही बोल रहे हैं और इनकी बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। तो अपने जीवन में आप देखिए और प्रचार में देखते हैं कि वही बात हम एक व्यक्ति को बोलते हैं और व्यक्ति तुरंत हाँ बोल देता है और दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं ये तो पूरी बकवास है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि व्यक्ति जिस स्तर पे होता है अगर उस स्तर पे वो कार्य करे तो अपने आप आगे के स्तर के लिए वो प्रगति कर लेता है। जो व्यक्ति श्रद्धा के स्तर पे है अगर साधु संग करेगा तो भजन क्रिया होने ही लग जाएगी, और अगर भजन क्रिया कर रहा है तो अनर्थ निवृत्ति होगी ही, और अनर्थ निवृत्ति होगी तो निष्ठा भगवान के चरणों में आएगी ही, और हम निष्ठा तक पहुंचे तो रुचि आएगी ही। तो बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि ना मेरी रुचि कैसे आएगी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो तरीका बहुत सिंपल है, साधना भक्ति के द्वारा। अगर हम इस प्रकार से भक्तों का संग करते रहेंगे, भजन क्रिया करते रहेंगे तो अपने आप होने लग जाएगा। और हमें समझ में आना चाहिए कि सभी में भक्ति की शुरुआत से लेकर प्रेम की प्राप्ति तक भी साधु संघ बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों का संग करते रहना, उनसे सुनते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रुचि को प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बता रहे हैं, भगवान के बारे में श्रवण करने की रुचि। जितना भगवान के प्रति प्रेम हमारा विकसित हो रहा है, उतना ही भगवान के बारे में सुनना और चर्चा करना हमको अच्छा लगना चाहिए। और तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कौन सी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि श्रद्धा ही प्रेम है, लेकिन श्रद्धा जो है वो डाइल्यूटेड है, मतलब तरल अवस्था है, और जो श्रद्धा का जो प्रगाढ़ अवस्था है उसको प्रेम कहा जाता है। जैसे एक दूध है, दूध को उबालते 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 ही रबड़ी बन जाती है, कुछ अलग से नहीं लेके आते हैं। पानी की मात्रा जैसे जैसे कम होती जाती है, वैसे वैसे दूध गाढ़ा होकर के रबड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति भक्ति करता रहता है, उसके हृदय जितनी मात्रा में शुद्ध हो जाएगा, स्वतः भगवान के प्रति श्रद्धा अपने आप स्फुरित होने लगती है। प्रेमावस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। यानी क्यों रहता है? क्योंकि प्रेमावस्था में इतनी सुख मिलता है भक्ति करने में कि और कुछ कार्य करने की भक्त को इच्छा नहीं रहती है। अतः भक्ति की मंद विधि से ध्यान देना चाहिए। मंद विधि मतलब धीरे धीरे भक्ति कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि हम आज भक्ति करना शुरू कर रहे हैं और कल एकदम से शुद्ध भक्त बन जाएंगे। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आज सीखी कि ना तो हमको अपनी भौतिक आसक्ति को मुक्त होने के लिए साधना भक्ति करनी है, अपने आध्यात्मिक जीवन के या कह सकते हैं के की सिद्धि क्या है, जो है कि भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत दासत्व, उसके भय से मुक्त होने के लिए गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, संबंध ज्ञान, और साथ साथ गलत सलत फिलॉसफी, गलत सलत दर्शनों से बचने के लिए हमें प्रामाणिक रूप से शास्त्रों से सुनने की आवश्यकता है। अब एक और बात है, थोड़ा सा हम शिला विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी की कमेंट्री को देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ भक्त ये जो असुर हैं उनके प्रति जो भय है उसको और उनके प्रति जो क्रोध है उसको त्याग करके और भगवान के श्रवण कीर्तन में ही रत रह करके भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को, लीलाओं को सुन करके शुद्ध हुए हैं भगवान के ज्ञान से, और फिर इस प्रकार से भगवान के चरणों की प्रेम की प्राप्ति करी है। ये एक दूसरा अर्थ है इस श्लोक का, बहुत सुंदर है कि जो राग और भय है और क्रोध है, यानी कि ना तो जो असुर प्रकृति के लोग हैं उनसे ना कोई आसक्ति है, ना उनके प्रति कोई ना उनके प्रति कोई भय है और ना उनके प्रति क्रोध है कि काय को भक्ति नहीं कर रहे। तो भगवान यहां बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, उनके तात्पर्य में बोल जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आज ही लोगों ने मेरे स्वभाव को जान करके मुझको प्राप्त किया है, बल्कि पहले भी ऐसा किया है, पिछले कल्पों में भी ऐसा हुआ है। जब मैं आया था तो लोगों ने मेरे स्वभाव को जाना और मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को समझा और मुझको प्राप्त किया। ये इस श्लोक का उद्देश्य है। ज्ञान तपस्या को श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं कि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझना यही ज्ञान है और इसमें अपनी इंद्रियों को लगाए रखना यही तपस्या है। इसके द्वारा व्यक्ति शुद्ध होता है। इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है, अर्थ है कि भगवान के जन्म और कर्म की शाश्वतता को समझने के लिए उन्होंने एक तपस्या ये करी कि जो गलत सलत सिद्धांत हैं, जो जहर की तरह लगते हैं, उसको वो सहन कर लेते हैं, यानी कि उस पर वो विचार नहीं करते, उनको सोचते नहीं, उनको सुनते नहीं है। श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं, श्रुति से कोट करते हुए, तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम, जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझते हैं, तैत्तिरीय आरण्यक उपनिषद से बताया गया। तो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के भक्त हैं, वो फालतू की कह सकते हैं कल्पना से उत्पन्न हुई जो सिद्धांत हैं उनके प्रति आसक्ति नहीं रखते, ना उन लोगों के प्रति आसक्ति रखते जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि भगवान तो अभी आए हैं, भगवान तो निराकार थे उसके बाद अब साकार हुए, इस प्रकार की बातों से ना तो क्रोधित होते हैं और ना उनमें आसक्त होते हैं। और कारण क्या है? क्योंकि वो उनका मन जो है, उनका चित्त जो है, वो भगवान की लीलाओं पर ध्यान करने में, विचार करने में, श्रवण करने में, गाने में ही लगा रहता है, और इस प्रकार से भगवान के प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इस प्रकार से श्लोक को समझाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।